आनंदास्वादन प्रेमियों का है। तो आनंदास्वादन कैसा है? ये भगवान का आनंद जितने आनंद का साधन है, अपने प्रेमियों के भोग्य बनकर भगवान, प्रेमियों के भोग्य बनते हैं। कोई उनको माता मान करके, पिता मान करके पिता का सुख भोगता है, कोई उनको मित्र मान करके मित्र का सुख भोगता है, कोई उनको स्वामी मान कर स्वामी का सुख भोगता है, कोई उनको मालिक मानकर मालिक का सुख भोगता है। इस प्रकार से भगवान अपने आनंद का वितरण करते हुए अपने प्रेमियों के आनंद में आनंद का रस रहते हैं। ये स्वरूपानंद के द्वारा, ये प्रेम वितरण के द्वारा आनंद का आस्वादन करना, ये भगवान का रमण है। इस भगवान के रमण के अधिकारी कौन है? तो ये बात अब परसों हुई थी, इसके अधिकारी श्री गोपीजन है। यहाँ तक की संक्षेप में बातचीत हो सके। अब कहते हैं कि इसी का नाम शुद्ध भक्ति है और इसी का नाम निर्गुणा भक्ति, जिससे जैसे गंगा की धारा निरंतर समुद्र की ओर सारी विघ्न बाधाओं को हटाती हुई जाती है, चली जा रही, इसी प्रकार जिसके मन की गति अविच्छिन्न भाव से निरंतर भगवान की ओर बहती रहे, उसका नाम निर्गुण भक्ति है। लक्षण भक्ति और बच्चे निर्गुण से विवाद कर अरे तो कभी होता या भक्तों पुरुषोत्तम, तो ऐसे भक्तों की क्या चाह होती है? सारों के साथ स्वामी के सारों के गति पर दीयमान नगर मंत्री बना है। भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा को छोड़कर ऐसे भक्त जो है वो सात प्रकार की मुक्तियां दी जाने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये प्रेमी भक्त, इसका ये मानना चाहिए कि अमुक्त नहीं है, सेवा से अलग रहकर वो किसी और मुक्ति को नहीं चाहते, लेकिन वो जगत के बंधन में है, सेवा के नहीं। जगत का, विषयों का, ममता का, आसक्ति का कोई बंधन उनके जीवन में रह गया है तो नहीं, वो समस्त बंधनों से सर्वथा विमुक्त है, तभी वो भगवान के प्रेमी। तो कैसे भगवान की अपार कृपा से जब कभी किसी अदर्शनीय सौभाग्यवश जिनको ये शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, वे अपनी सारी ममता भगवान को समर्पित कर सकते हैं। सारी ममता को कहीं कहीं किसी न किसी चीज में ममता रख लेते हैं। तो शुद्ध भक्ति की जो परिणता अवस्था है उसका नाम प्रेम, और ये प्रेम कर साधकनिर्गी शुद्ध भक्ति के परिणत अवस्था में पहुंचे हुए ये अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवत सेवाधिकार प्राप्त करके कृपार्थ होते। चैतन्य महाप्रभु के ये उद्गार हैं, शुद्ध भक्ति हम जो है प्रेमी उत्पन्न, अतो शुद्ध भक्ति कही लक्षण, शुद्ध भक्ति से ही विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। शुद्ध भक्ति से ही विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है, इसलिए शुद्ध भक्ति के लक्षण संक्षेप में जान लेने चाहिए। अन्न वांछा, अन्न पूजा, छाई ज्ञान कर्म, आम कुल में सर्वेन्द्रिय कृष्ण रसो, प्रेम शुद्ध भक्ति पूरा हई के प्रेम है, भक्ति उनमें शुद्ध भक्ति का लक्षण किया। शुद्ध भक्ति जो है ये प्रेम को उत्पन्न करती है और प्रेम से उत्पन्न है। इस शुद्ध भक्ति का लक्षण है बहुत संक्षेप में और सार रूप से यह है कि दूसरी आकांक्षा प्रेम के अतिरिक्त एक और कोई आकांक्षा, मैंने प्रेमास्पद को प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं। प्रेमास्पद का प्राप्त करना बड़ा प्रेम और इसमें बड़ा सुख, परंतु प्रेमास्पद के सुख की वांछा है प्रेमास्पद को प्राप्त करने की वांछा नहीं, इसी भगवान प्रेम। प्रेमास्पद यदि प्राप्त नहीं होना चाहते, नहीं मिलना चाहते, तो प्रेम कहेगा कि प्रेमास्पद की मिलेंगे तो सच हो, लेकिन तो अन्य वांछा प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की भी वांछा का परिचय और अन्य पूजा। प्रेम के सिवा अन्य किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति वस्तु भावना कल्पना किसी की भी पूजा न करें, प्रेम का पुजारी इसको कहते। प्रेम की वांछा प्रेम का पूजक और ज्ञान कर्म जो प्रेम से विलग हो कोई उनका परित्याग। अन्य वांछा का परित्याग, अन्य पूजा का परित्याग और ज्ञान कर्म का परित्याग। क्या करे? अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णेर सेवन, श्री कृष्ण की अनुकूलता की दृष्टि से जो उनको अनुकूल लगे इस प्रकार की सेवा सर्वेन्द्रिय के द्वारा करे। चार इंद्रियां मन बुद्धि ये सब सर्वेन्द्रिय नहीं है, सर्वेन्द्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करे अनुकूल उनकी अनुकूलता के अनुसार, अति अनुकूल अनुसार नहीं। इसका नाम शुद्ध भक्ति, इससे प्रेम का उदय होता है, इन्होंने इसकी व्याख्या। तो पहले ये नाग पंचरात्र का एक वाक्य ग्रंथ किया गया, अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संग का। इससे ये सिद्ध हुआ कि स्त्री पुत्र विद्यादि में ममता रहित होकर श्री कृष्ण मुख्य ममता ही प्रेम नाम से अभिहित है। मैंने संसार के लोक परलोक के किसी वस्तु में ममता न रहे और ममता रहे केवल कृष्णनिष्ठ होकर, इस प्रकार की कृष्णनिष्ठ ममता ही का नाम प्रेम है। और ये भगवान के लीला गुणादि को सुन सुनकर अपने आप प्राप्त होती है, तो इसी का नाम जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए इसका नाम निर्गुणा भक्ति है, इसका नाम शुद्धा भक्ति। तो इस भक्ति से जो निर्गुण भक्ति नाम पुरुष है, निर्गुण भक्ति है, इसमें किसी गुण की दृष्टि नहीं है। प्रेम के लिए कहा गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम सत्क्षण लब्धमानम, कि छह प्रेम के लक्षण कहे उसमें सबसे पहला लक्षण है गुण रहितम। तो प्रेमास्पद के गुणजनित प्रेम का अभाव और सांसारिक तीन प्रकार के गुणों में से किसी गुण को लेकर होने वाली भक्ति ये नहीं, तो इसमें क्या होगा कि भगवान की पूर्ण ममता की प्राप्ति होगी और तभी प्रेम के रस की उत्पत्ति होगी। तो ये साधन भक्ति बनी, भक्ति के तीन प्रकार माने, ये तो उसके अनेक भेद हैं। एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति और एक शुद्ध भक्ति। जिन आसनों के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो वो साधन भक्ति, जिन भक्ति साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति में निष्ठा हो जाए उसका नाम सिद्ध भक्ति। और जो भक्ति केवल प्रेम मूलक हो, रागाशंका या रागा मेगा हो, उसका नाम शुद्ध भक्ति। तो साधन भक्ति से जब रति का उदय होता है तब तो शुद्ध भक्ति होती है, रति जब प्रगाढ़ होती है तब उसका नाम प्रेम होता है और वही शुद्ध भक्ति है। साधन भक्ति हुई तो रति उदय, रति गाढ़ हुई गई तार प्रेम नाम है। साधन भक्ति के द्वारा रति की उत्पत्ति होती है और रति के प्रगाढ़ होने पर उसका नाम प्रेम होता है। तो दूसरी वांछा, दूसरी पूजा, ज्ञान का इत्यादि का परित्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए कीर्तनादि भक्त्यांग साधनों के द्वारा स्त्री पुत्र परिजन धन यश कीर्ति लोक प्रलोक विषय वैभव इत्यादि में रहने वाली ममता को सर्वथा छोड़कर भगवान में पूर्व ममता प्राप्त करने की इच्छा और चेष्टा हो। इस प्रकार करते करते जो अन्य निरपेक्ष अशिष्ट ममता हो जाए, मन अन्य कहीं पर तो ममता रहे नहीं और सारी ममता श्री कृष्ण में ही जाकर के केंद्रित हो जाए, इसका नाम प्रेम, इसका नाम शुद्धा भक्ति। तो लेकिन अब शुद्धा भक्ति के भी भेद कहते हैं। ये कहते हैं कि ये शुद्धा भक्ति भी ममता के तारतम्य को लेकर, ममता के विशेषत्व को लेकर, ये एक ही प्रेम विभिन्न भक्तों के हृदय में विभिन्न रूप की धारण करके विभिन्न नाम और भावों से युक्त होकर ये व्यवहित होते हैं। भक्त भेद रति भेद पंच प्रकार, शांत रति, दास रति, स्वच्छ रति आर, वात्सल्य रति, मधुर रति, ये पंच विभेद रति भेद कृष्ण भक्ति है। पंच भेद दास शांत, दास स्वच्छ, वात्सल्य, मधुर वचनान, कृष्ण भक्ति रस मध्य, ये पंच प्रकार। तो कहते हैं कि भक्त के मानस भावों के भेद के अनुसार भक्ति के पांच प्रकार होते हैं, शांत रति, दास रति, सत्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति। इन्हीं का नाम पांच रस रूप है, शांत रस, दास रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये कृष्ण भक्ति रस में ये पांच रसों की प्रधानता रस करे, वो रस शास्त्र में एक जगह 28 रस माने, ये 16 रस माने, एक जगह 11 माने, एक जगह 9 माने, एक जगह 6 माने, एक जगह 5 माने हैं। ये रसों के भेद हैं और ये अलग विषय है इस शास्त्र का, यहाँ की आवश्यकता नहीं। तो पंच ये पांच प्रकार के रसियों का संक्षिप्त समझ लेना आवश्यक है। स्त्री पुत्र धन दौलत मान कीर्ति यश शरीर, इनमें ममता रहित हो जाना तो इनमें से कोई समस्या नहीं, इनकी ममता को छोड़ना तो पांचों प्रकार की भक्तियों में आवश्यक है। तो ये जब ये सांसारिक तमाम वस्तुओं से ममता शून्य होकर पूर्ण कृष्ण निष्ठा में जब अपने इस नाम रूप को खो देता है, आज आत्महरा हो जाएगा, आत्महरा मैंने अपने को खो देने वाला, अपने को खो देने वाला जब बन जाता है तभी लौकिक ममता रहित कृष्ण निष्ठा होती है। इसका नाम शांत रति। इस शांत रति में इंद्रियों का दमन, मन का दमन, दुराचार सदाचार का सर्वथा परित्याग, वैराग्य का उदय और भगवान में निष्ठा, ये हो जाते हैं। इसका नाम शांत रखना। यहाँ कुछ दूसरी बात टीकाकरण का बड़ा सुंदर अपना अपना भाव ये कहते हैं कि ज्ञान रूप की साधना में जब ब्रह्म भाव की अनुभूति होने लगती है तब भी श्री प्रतिज्ञा जी में ममता नहीं रहती और उनको भी शांत भाव प्राप्त रहता है, उनके भी चित्त पर शांति दूर हो जाती है। परंतु उसमें भेद क्या है कि वे सर्वमूल स्वरूप पर ब्रह्म में अपने शुद्ध अहम भाव को समर्पण करके ब्रह्मभूत होकर निर्विशेष आनंद सागर में डूब जाते हैं। परंतु उनका जो ये शांत रस है बड़ा ऊंचा, ये कृष्ण भक्ति की भांति कृष्ण निष्ठा जनित आनंद देने वाले बनते हैं। आनंद में डूब जाते हैं, आनंद भोगते नहीं। तो कहते हैं कि ब्रह्मभूत और शांत भक्त इन दोनों के तारतम्य का विचार करने पर ये अनुमान होता है कि ब्रह्मभूत ब्रह्मानंद स्वरूपता को प्राप्त करके आनंद सिंधु में लीन हो जाते हैं और शांत रस के भक्त किस ऋषिता को अवलंबन करके आनंद समुद्र में सुख से तैरते रहते हैं। ये तो आनंद समुद्र में डूब कर लीन हो जाते हैं और ये आनंद समुद्र में सुख पूर्वक तैरते रहते हैं। तो ब्रह्मवेद ब्रह्म ब्रह्म भवती रसम देवायन लब्धियानंदम भवती। इन दोनों श्रुति वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ब्रह्मरूप सर्वात्म स्वरूप कर्तत्व का आस्वादन करते हैं ये सर्वात्म उन्मक वस्तु में आत्मस्वरूप के द्वैत को डुबो कर सर्वात्म वस्तु के स्वरूपा अंतर्गत अपने को खो देते हैं, उनका अलग अस्तित्व रह नहीं जाता। लेकिन जो सर्वात्मक वस्तु रस रूप से प्रियतम रूप से आस्वाद्य रूप से मेरा है ये इस ममत्व के भाव से ग्रहण कर सकते हैं, वे सर्वात्मक सर्वप्रिय और सर्वविध आस्पद वस्तु के मूल स्वरूप सच्चिदानंद का आस्वाद पाकर आस्वाद पाकर परमानंद ने अपने आप को मिलाया है। ये आस्वाद पाते हैं और वो भूल जाते हैं। ये उभेद इसलिए ये देखा जाता है कि ब्रह्मभूत ब्रह्मानंद के स्वरूप और शांत भक्त में ये अंतर है कि ब्रह्मानंद स्वरूप है और ये ब्रह्मानंद के भोक्ता है। यहाँ ब्रह्म उनमें मिल गया और यहाँ ब्रह्म उनका भोग हो गया। तो शांत भक्तगणों ने बस केवल कृष्ण निष्ठा जनित आनंद का ही भोग होता है और कोई संसार के भोग की कोई बात नहीं है। लेकिन कृष्ण निष्ठा जनित आनंद का भोग होता है, कृष्ण सेवानंद का आस्वादन यहाँ नहीं होता है। शांत रथ में भोजन के लिए वो सर्वात्मक स्वरूप में डूब जाने की बात छोड़ दी अब पांच रसों के बाद। तो शांत रस में कृष्ण निष्ठा जनित आनंद का भोग होता है, सेवानंद का नहीं। तो सेवानंद में कुछ कुछ प्रकार की स्थिति होनी चाहिए जहां सेवक अपना सेवक मान रहे। शांत रस में निष्ठा श्री कृष्ण में है तो श्री कृष्ण ने उनको सेवक नियुक्त नहीं किया है, तो दास रस लाई। तो जैसे एक कोई महाराजा है किसी देश का और वो अपनी सारी प्रजा पर बहुत अधिक ममत्व रखता है और प्रजाजन भी उसको अपना उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ पूज्य मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। पर पृथक सेवा नहीं, प्रजा के भांति सार्वजनिक सेवा। राजा भी उनको अपना मानता है, वो भी उनको अपना मानते हैं। अपना मानने के नाते अपनापन है, परंतु उसमें कोई खास मजबूत की बात नहीं है। वह अंतरिक होते हैं और वह अंतर्कृपण करता है, परंतु यह नहीं कि उनसे कहते कोई विलासता नहीं है। आज रात को हमारे कमल के पास बैठ के हवा किया, हमारी भौतिक है ये तो चीज है, ये उनसे प्रजा से राजा नहीं करता। राजा के पूरे मन में रोके उन्नों कर रहेंगे तो मैडम को रखा हुआ आया प्रजा में से। तो प्रजा का जो भाव था वो भाव उसमें है ही, दूसरा नजदीक का भाव और हो गया कि वो खास सेवक भी हो गया, खास सेवक हो गया। खास सेवक होने से कुछ और नजदीक आ गया और नजदीक आ गया तो उसमें सेवानंद का आस्वादन आरंभ हो गया। तो ममत्व जैसे वो कहते हैं एक तो ममता का आनंद और एक ममता स्पद वस्तु के भोग का आनंद, इन दोनों में बड़ा भेद होता है। हम देखते हैं किसी आदमी को कोई धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, कोई पदार्थ प्राप्त हो जाए तो उसमें उसकी मेरी बुद्धि भी मेरा इतना आनंद उसको मिल गया। भूखा आदमी था उसको मिठाई की थाली मिल गई, नहीं यह आनंद चाहिए, पर जब उसको खाएगा
तब विशेष आनंद हो रहा होगा। एक तो ममतास्पद वस्तु का आनंद, एक ममतास्पद वस्तु के भोग का आनंद। तो शांत रस में ममतास्पद वस्तु का आनंद है और दास रस में ममतास्पद वस्तु के भोग का आनंद आरंभ हो जाता है। तो दास जो है वो हमेशा तक पास रहता है। दास को भगवान ये उनकी सजा अपना समय पर आ रहे समय पर जा। दास जो है उसकी तो मृत्यु होती है खास काम, जो बोले भी झाड़ू बरदार है, वो पानी भरने वाला है। एक सूरत के अलग अलग काम होते हैं, कोई सूरत बैठा भी प्यारा होता है, तो सभी काम किसी सुबह के कोई उसे बड़ा विश्वस्त होता है कि गुप्त काम अपने खास काम राजा इसी से लिया करता है। तो सूरत का कार्यक्रम तो उसमें एक बात सूरत में होनी चाहिए, वो बड़े काम की बात। सेवक में सेवा को छोड़ करके अपने किसी काम की चिंता नहीं रहनी चाहिए। और ये इसीलिए शांत हो गया, शांत रस की प्राप्ति के बिना दस रस की प्राप्ति प्रारंभ नहीं कर सकता। क्यों? उसके लिए रस में नहीं, जिसका मन रस में नहीं, जिसको अपने भोग की इच्छा, अपने आराम का ख्याल, तो कहीं मालिक की सेवा करने में उसका अपना आराम कहीं कम पड़ता होगा, तो ये सोचेगा भाई क्या करें, तो सोचेगा ठीक रहे। अपना काम जब तक अलग रहता है तब तक सेवा सेवक आदमी नहीं बन सकता। या अपना काम मालिक का काम अड़ जाता है, वहां सेवक का पता लगता है कि सेवक वास्तविक हर गए, मेरा काम और मेरे मालिक का काम, मेरा काम चाहिए तो पन्ना धार रही एक पन्ना धार। तो राणा के यहां थी तो अमर सिंह रहा उदय से बात, तो उसको मारने के लिए एक शत्रु तैयार था। तो उन समय मारने का छोटा बच्चा था, बच्चे को मार डाले, तो पन्ना भाई ने क्या किया, उस बच्चे उदय उस बच्चे को तो भेज दिया राजकुमार को, तो अपने बच्चे को मारा, उसको तो एक सावरी में रख दिया और अपने बच्चे को रख दिया, उसके बच्चे को आकर वो मार गए। और ये उस राजकुमार को लेकर के अपने चल दी उसको बता दी। तो जहां अपना और मालिक का स्वार्थ अड़े, वो अपने स्वार्थ का विघात करके मालिक के साथ रक्षा करे, वो उसमें रखेंगे। तो भगवान के दास तो हनुमान भी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते जिनको अपनी चिंता ही नहीं, अपने लिए कुछ करना है, कुछ खाना पीना है, कुछ आराम करना है, नौकरी क्या मिलेगी, अरे इनाम क्या मिलेगा, और कई तारी ही मिल जाए इनको तारीफ सुनने तक की और तो कोई बात ही नहीं। तो सेवक शांत रस वाले से दास रहती इसलिए उसी के नजदीक पहुंच गया, मालिक उसको कह कह करके काम कराता है, इसलिए शांत से दास रहती होती। तो दासरथी में क्या होता है, मेरे वाले असमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दास का अभिमान है ना, ये सेवक रघुपति पति मोरे, ये मेरे स्वामी। तो अपने स्वामी का अभिमान, अपना अभिमान नहीं, ये मेरे स्वामी है, मुझसे काम लेते हैं, मुझको सेवा बताते हैं, मेरा कितना धन्य भाग्य है, इसने ये मालिक जो है ये मेरे हो गए हैं। तो मालिक में मेरे तन का आधार हो जाए और सेवा में ममता हो जाए, मैं सेवा के सिवा और कोई भी काम नहीं, तो वो मालिक के नजदीक पहुंच गया। लेकिन नजदीक पहुंचने पर भी संकोच होता, दास ने और स्वामी ने परस्पर समानता का बर्ताव नहीं, इसमें भेद रहता है। तो कहते भाई एक उदाहरण देते हैं कि सारी वस्तुओं का भोग भोग जगत में एक सा नहीं होता, अन्न का भोग भोजन, वस्त्र का भोग पहनना है, मुकुट का भोग सिर पर रखना है, जूते का भोग पैरों में उसको पहनना है, सभी भोग हैं, सभी आवश्यक हैं, अपने अपने स्थान पर सभी का महत्व है, लेकिन उनके अलग अलग भेद होते हैं। इसी प्रकार सचिदानंद में हम दिखे श्री भगवान के भोग हैं, तो सर सेवा नहीं, तो सेवा कोई दास रखी थी, कोई सच थी, कोई वास्तव्य थी, कोई मधुरथी, इस प्रकार उसके भेद होते हैं। कि सेवा के तारतम्य से भोग से मेरी तारतम्य आ जाता है। तो जो भगवान को बड़ा अपने को तुच्छ, भगवान को स्वामी अपने को सेवक, भगवान को आज्ञा देने वाला अपने को आज्ञा पालन करने वाला, भगवान की सेवा से ही अपने जीवन की सफलता मांगने वाला जो साधक है वो दासरथि का भक्त है। तो सेवाधिकार को प्राप्त हो गया, इसलिए शांत भक्त की अपेक्षा तो और आगे बढ़ गया, नजदीक आ गया।